ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत 6 दिसंबर को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अब तक विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ परामर्श किया है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश जाएंगे। वे खजुराहो में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने एनसीआरबी से अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली आईसीजेएस 2.0 में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए मामले के पंजीकरण से लेकर उसके निपटान तक सभी आपराधिक मामलों के लिए पूर्व निर्धारित चरणों और समय सीमाओं पर अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात मूल्य 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के कारण देश में स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि हुई है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ाकर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएलआई योजना से 3,00,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 6,00,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों की जांच के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का गठन किया है। न्यायाधिकरण इसके गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों की भी जांच करेगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माइकल जोथान खोमा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उल्फा पर प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई प्रयासों का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री जोशी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जागो ग्राहक जागो ऐप किसी यूआरएल लिंक के असुरक्षित होने पर ग्राहकों को सचेत करेगा। सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सशक्त उपभोक्ता ही मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देश में उपभोक्ता गतिविधियों के महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। नववर्ष और क्रिसमस से पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से भर गए हैं। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली और डलहौजी जैसी जगहों पर पर्यटक बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग की पूर्वानुमान सटीकता पिछले 10 वर्षों में 40 से 50% तक बढ़ गई है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि मूसलाधार वर्षा का सटीक पूर्वानुमान भी 60% से बढ़कर 80% हो गया है। महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच वडोदरा में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर में 9 विकेट पर 349 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से प्रतिका रावल ने 76 और स्मृति मंधाना ने 53 रन की पारी खेली। हरलीन देओल ने शानदार 115 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।